खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से हम आपको रेडियो प्रोग्राम मसीह की आवाज़ वॉइस ऑफ क्राइस्ट में खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आर किंग लूथरन चर्च मिसिसागा के ताबुन से पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम की बदौलत आपकी जिंदगी तब्दील हो सकती है और ये आपकी जिंदगी के लिए बाबरकत साबित होगा। प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए। आज के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
रेडियो मसीह की आवाज खुदा यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम से शुरू करता हूँ। आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अदाब और दिली खुश आमदेद कहते हुए बड़ी मुसर्रत होती है कि आप हमारे साथ हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक होते हैं। उम्मीद है कि आप सब खुदा ताला की मेहरबानी से बाखैरियत से होंगे। हमारी दिली दुआ है कि खुदा करीम हम सबको अपनी पनाह में रखे। जैसा कि मसीह लोग जानते हैं और आज आमद का पहला इतवार है, क्रिसमस से पहले 4 इतवार होते हैं और 5वां जो इतवार होता है वो खुदा यीशु मसीह के लिए एक कैंडल जलाई जाती है। एंड टुडे इज द फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट। आज के जो चर्चेज में है वो उम्मीद की कैंडल जलाई जाएगी। हमें उम्मीद है, बनी इसराइल को भी ये उम्मीद थी कि कोई नजात दहिंदा बचाने वाला आएगा। और यशायाह नबी भी फरमाते हैं कि जो लोग तारीकी में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। आज का जो इतवार है उम्मीद का इतवार है और जो 4 इतवार होंगे लव जॉय पीस, प्यार मोहब्बत शादमानी खुशी अमन और सुकून, और जो 5वीं कैंडल है कैंडल ऑफ फेथ वो खुदा यीशु मसीह के लिए होती है, कैंडल ऑफ प्योरिटी और क्राइस्ट कैंडल उसको बोलते हैं। और आज जो संडे शुरू हो चुका है ये हमारा एडवेंट सीजन है, आमद का सीजन इसको बोलते हैं। तो आए हम प्रोग्राम को शुरू करते हुए आज ये बताएंगे कि गिरजाघरों में भी ये मोमबत्ती रोशन की जाती है और इससे लोग अपने आप को तैयार करते हैं, उम्मीद होती है कि हमें कोई बचाने वाला मसीहा आएगा। आपका होस्ट कम एल्डर कमलदीन और जनाब पादी जेम्स लूक साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर इस बार सुबह 8 से 9 बजे तक AM 770 बैंड पर क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च में से सागर टोरंटो से पेश किया जाता है। आप प्रोग्राम को eawaz.com के लिए भी सुन सकते हैं और जैसा कि फेसबुक पे आप देख रहे होंगे पारी साहब और मुझे देख रहे हैं, इसके लिए अगर आपको नहीं पता इन्फॉर्मेशन तो जस्ट लॉग इन टू www.masikiawaz.ca और अगर आपने हमसे रब्ता करना हो तो connect@masikiawaz.ca। मेरा टेलीफोन नंबर 6473390397 है और जनाब पादी जेम्स लूक साहब का टेलीफोन नंबर 416-454-2581 उनका टेलीफोन नंबर है और हमारे चर्च का टेलीफोन नंबर है 9058228931 हमारे चर्च का टेलीफोन नंबर है। आज जो पादशाह आपने टॉपिक लिया है तो आपके सामने जूम पे सब कुछ आ रहा है। जूम की आईडी जो है वो भी मैं बताता चलूं, 6800107261 ये जूम की आईडी है। और आज का जो मैसेज भाई साहब ने टॉपिक लिया है वो है ट्रू वर्शिप, सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी या सच्ची प्रस्तुति, इसके मुतालिक हम आज भाई साहब से सुनेंगे। और इससे पेशतर कि हम आगे चलें हम हसब मामूल दुआ के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें ताकि प्रोग्राम को आगे शुरू कर सकें। जी भाई साहब,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जहन जो हैं वो आलम बाला पर लगाएं, खुदा से राब्ता कायम करें। खुदा उन खुदा हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं प्यारे खुदा खुदा, हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो जिंदा और बरहक है, सच्चा है। और आए खुदा खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। जब भी हम तेरे पास आते हैं तो तू हमें अपने बच्चों की तरह اے خداوند ٹریٹ کرتا ہے, کیونکہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے. خداوند ہم شکر گزار ہیں اپنے اس ملک کینیڈا کے لیے جس میں ہم آرام اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں. خداوند ہم شکر گزار ہیں اپنے اسٹوڈیو کے لیے, AM770 کے لیے, eawaz.com کے لیے, کہ اے خداوند ان کے سٹاف کے لیے ہم بہت برکت چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی مدد سے یہ پروگرام جو ہے دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچتا ہے. خداوند ہم شکر گزار ہیں تمام سننے والوں کے لیے جو اس وقت اپنے ریڈیو, کمپیوٹر اور فون آن کر کے آئے خداوند تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں. تیرے پاکلام کے ذریعے سے آئے خداوند سب کو بہت برکت دے, اور آئے خداوند اپنی پہچان میں سب کو بڑھا, تاکہ آئے خداوند وہ اسے جان سکیں کہ تو ایک زندہ خدا ہے, تو ایک واحد زندہ خدا ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اور آئے خداوند ہم شکر گزار ہیں اس موسم کے لیے, اس سیزن کے لیے, آئے خداوند کرسمس ٹائم کے لیے, جبکہ ہم آج ایڈونٹ سیزن میں داخل ہو چکے ہیں. تو آئے خداوند خدا تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے ہم تیار ہوں, اور آئے خداوند جو بھی آئندہ چار ہفتوں میں ہمیں اس کی آمد کے متعلق بتایا جائے وہ ہمارے دلوں میں اتر سکے. آج کا جو مضمون ہے, یعنی حقیقی عبادت جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, اے خداوند آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور تو ہمارے دلوں کو تیار کر, ہمارے دماغوں کو تیار کر کہ ہم عبادت جو ہے وہ روح اور سچائی سے کر سکیں. اے خداوند خدا ہم دعا کرتے ہیں, شکر گزار ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہم شکر گزار ہیں دونوں بھائیوں کے لیے, جمشید دین کے لیے, نوخیز دین کے لیے, کہ اے خداوند جن کو تو نے بالکل تندرست کیا ہے, اور اس بچے کے لیے جو ٹیکسلر سے ریکویسٹ آئی کہ اے خداوند وہ بچہ جو ہے اب بالکل تندرست ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ جو تندرست ہو چکے ہیں ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں. لیکن اے خداوند خدا جو لوگ کمزور یا بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں, اور اے خداوند ان کا ایمان ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے نام پہ دعا کی جائے تو لوگ شفا پا جاتے ہیں, کیونکہ تیرا نام ایک شافی نام ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس بہن کے لیے جو کہ ایجیکس میں ہے, اے خداوند اس پہ رحم کر, اس کے گھٹنوں کی تکلیف کو دور کر. ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی انس سلیم کے لیے جو کہ اے خداوند خدا پاکستان میں ہیں, کراچی پاکستان سے ان کا تعلق ہے, ان کی بنائی جو ہے وہ جا رہی ہے, تو اے خداوند خدا ان کو تو اپنا کرم کر, کیونکہ تو شفا شافی نام ہے تیرا, اور اے خداوند خدا اس کی بنائی کو بہتر کر. اس بچے کے لیے جو یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں ہم دعا کرتے ہیں. سریا بی بی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جو گوجرانوالہ پاکستان سے ہیں. اسی طرح سے اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کاشف انور کے لیے, اس کے خاندان کے لیے جو لاہور پاکستان سے ہمیں جو کہ ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. اے خداوند تو معجزات کا خدا ہے, تو تمام بیماریوں کو دور کر سکتا ہے. اے خداوند سب پہ رحم کر, سب پہ رحم کر اس کرسمس سیزن میں. اے خداوند ہماری مددگار, باقی ماندہ عبادت میں ہمارے ساتھ ہو, یہ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں, آمین.
آمین. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا جو ٹاپک ہے حقیقی عبادت ہے. داؤد نبی فرماتے ہیں, اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو, خوشی سے خداوند کی عبادت کرو, گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو, جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے, اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں, ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں, شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور ہم کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں, اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو, کیونکہ خداوند بھلا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے. خداوند اپنے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے, آمین. سامین آئیں ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں عبادت کے متعلق, آؤ عبادت کریں.
रहमत है उसकी सदियों पुरानी,
सफा का अजल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो।
अजीज आपने खूबसूरत गीत सुना कि इबादत करो उसकी इबादत करो, और आज का टॉपिक भी यही है कि सच्ची और हकीकी इबादत और परस्तिश। तो आए हम कलाम की तरफ चलते हैं, अपने ख्यालों को अपने ध्यान को खुदावंद के कलाम की तरफ लेके चलें, और उसकी आवाज जनाब पादरी जेम्स लूथर साहब के जरिए अपने खुदावंद के खादम के जरिए सुनते हैं। ये भाई साहब
बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको बताया गया है कि आज का टॉपिक जो है वो है हकीकी इबादत, या इसको ट्रू वर्शिप भी कहते हैं। आपको मालूम है कि हम कुछ दो हफ्ते पहले हम इसराइल से लौटे हैं, और मैं इसलिए इसका जिक्र करता हूं क्योंकि हम हकीकी तौर पे वो जगह देखते हैं, वो तमाम जगह देखते हैं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, खुदावंद यीशु मसीह जो थे उन्होंने मौजजात किए, उसके बाद उनकी मौत वाकया हो गई, वो उनको सलीब दे दिया गया और मौत वाकया हो गई, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। तो जब हम इसराइल जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की जब मिशन स्टार्ट होती है तो उनकी वहां पे यरहू का इलाका है जहां पे माउंट ऑफ टेम्पटेशन है, माउंट ऑफ टेम्पटेशन है जहां शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश की थी, और उनको ये देखे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शायद हाँ अभी ये जो है ये बंद क्यों हो गया, ये अच्छा भला
ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है, आप देख सकते हैं, और ये आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये 10,000 साल पुराना शहर है, दुनिया में सबसे पुराना शहर जो है वो जेरिको है, जिसको हम यरो भी कहते हैं, और ये इस वक्त हम खड़े हैं, सामने हमें माउंट ऑफ टेम्पटेशन नजर आता है, वो पहाड़ है जहाँ खुदावंद की आजमाइश हुई थी, शैतान ने उनको आजमाया है, वो आजमाइशें यहाँ पे हुई, आजमाइश जो है वो ये माउंट ऑफ टेम्पटेशन है, आप देख सकते हैं, और ये आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये 10,000 साल पुराना शहर है, दुनिया में सबसे पुराना शहर जो है वो जेरिको है, जिसको हम यरो भी कहते हैं, और ये इस वक्त हम खड़े हैं, सामने हमें माउंट ऑफ टेम्पटेशन नजर आता है, वो पहाड़ है जहाँ खुदावंद की आजमाइश हुई, शैतान ने उनको आजमाया था, वो आजमाइश
फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये पूरा ग्रुप था जिन्होंने उस पानियों में जो रिवर जॉर्डन है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा हुआ था, अगर आप इसके मुतालिक जानना चाहें कि ये बपतिस्मा क्या होता है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बपतिस्मा जो है ये हमारे एक तरह से आप कह लीजिए कि सैक्रामेंट है। और इसके बाद हम यहाँ पे गए जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है, जिस जगह पे बैतलहम में उसको हम, और वहां पे बहुत लंबी लाइन होती है वो जगह पे पहुंचने के लिए। तो ये हमारी यहाँ पे ब्रीफिंग हो रही है, हमारा जो है गाइड जो है वो हमें ब्रीफ कर रहा है यहाँ पे, और आप देखें कि ये हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पे, और वो भी देखना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हजरत ईसा की पैदाइश कहां पे हुई थी। तो इस तरह से हम ये बातें देखते हैं। सो आइए हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपको बताया गया है कि वो ट्रू वर्शिप है या हकीकी इबादत है, जो कि जिसके मुतालिक आज हम जानना चाहते हैं। आपको मालूम है कि हम आज जो है वो एडवेंट सीजन में पहुंच चुके हैं। एडवेंट सीजन ये होता है कि क्रिसमस से पहले, क्रिसमस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अर्श को छोड़ा और फर्श पे आए और उनकी पैदाइश जो है मुकद्दसा मरियम के यहां हुई। और हम देखते हैं कि यहां से ये जो एडवेंट सीजन है, इसका मतलब होता है एंटीसिपेशन, यानी कि वो खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए तवक्कुआत हैं, उनके आने के लिए मसीही लोग जो हैं वो तैयार होते हैं। और वो तैयारी जो है वो हम अपने अपनी जिंदगियों पे गौर करते हैं कि हम कहां पे खड़े हुए हैं, और इसलिए हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं ताकि हम उस मुनज्जी दो आलम को अच्छी तरह से वेलकम कर सके। तो ये चार इतवार जो हैं हमें बताते हैं कि हम उस चरनी तक पहुंचने के लिए, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक, ये चारों इतवार जो हैं हम अपने आप को तैयार करते हैं। और हम वो तैयारी जो है वो किस तरह से होती है, वो इसी तरह से होती है जब हम खुदावंद की इबादत जो है वो रूह और सच्चाई से कर सके। मेरे भाई और मेरी बहन, हम देखते हैं कि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा ने बनी इसराइल को भी ये बात कही थी। और इससे पहले कि हम आगे चलें, हम एक पैसेज देखना चाहते हैं, एक्चुअली दो पैसेजेस देखना चाहें। तो मैं एल्डर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे लिए ये दो पैसेजेस जो हैं वो हमारे लिए पढ़ें। एक तो है खुरूज, उसका 25 बाब और उसकी पहली 9 आयात जो है। खुरूज की किताब है, जो पुराने अहदनामे की किताब है, और वो तौरा की भी किताब है। मूसा को खुदा ने 5 किताबें उनसे लिखवाई थी और उनको दी थी, और एक उनमें से खुरूज की किताब है। खुरूज का मतलब होता है इखराज, यानी के जाना। तो ये बनी इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी से जाती है, तो अगर हम 25वां बाब और उसकी पहली 9 आयात से ना सुनेंगे तो ये खुरूज जो है उसके मुतालिक यहाँ पे का हमें बताया गया है। 25 बाब पहली 9 आयात। जी एल्डर साहब।
खाना इस्तेमाल के लिए नजराने और हदीये। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें, और जिन चीजों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये है, सोना और चांदी और पीतल और आसमान और एरगमानी और सुर रंग का कपड़ा और बारीक कितान और बकरी की शिम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तख की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के लिए तेल और खुशबूदार बखूर के मसालों और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना और बंदे जड़ने के नगीने, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसके मुताबिक तुम उसे बनाना।
बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खुरूज की किताब, या इसको इंग्लिश में एक्सोडस भी कहा जाता है, और यहाँ पे 25 बाब से लेके और 31 बाब तक, एक्चुअली 6 बाब हैं जिसमें कि एक नक्शा बताया गया है। खुदा ने उनको कहा था कि मेरे लिए तुम एक खैमा बनाओ, एक खैमा इज्तमा उसको कहा जाता था, इंग्लिश में उसको टैबरनेकल कहा जाता है, कि तुम ताकि मेरी इबादत जो है वो सही तौर पे कर सको। इसकी अगर आपने गौर किया हो तो 8वीं आयत में वो ऐसे कहते हैं, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूंगा, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूंगा। और ये हमें मालूम है कि किस तरह से खुदा जो है वो उनको गाइड करता है सहराए सीना में से। जब वो मिस्र से निकलते हैं तो सारी बनी इसराइल कौम जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ मूसा, मूसा उनकी लीडरशिप करते हैं और वहां से वो निकलते हैं उस गुलामी के मुल्क से निकल के, तो वो वादा की हुई जमीन की तरफ रवाना होते हैं। तो उसमें खुदा उनको एक हुक्म देता है कि तुम मेरे लिए एक मक्दस बनाना, और वो मक्दस जो है वो हम उसके मुताले अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले चले अभी हम यही देखते हैं कि वो मक्दस जो है वो सहराए सीना में वो बनाते हैं और किस तरह से वो खैमा इज्तमा जो है वो हमें दिखाई देता है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारी स्लाइड देख रहे हैं कि यहाँ पे वो खैमा इज्तमा का एक नक्शा दिया गया है। और खैमा इज्तमा जो है वो आपको मालूम है कि बनी इसराइल कौम जब सहराए सीना में से गुजरते थे तो उनके जो लीडर उनको लीड करता था वो तो इंसान के तौर पे हजरत मूसा थे, लेकिन दिन को बादल का सुतून और रात को आग का सुतून उनकी रहनुमाई करता था। और वो इस तरह से जहां पे वो बादल का सुतून या आग का सुतून खड़ा हो जाता वहां पे वो खैमे अपने गाड़ लेते थे। आप देख सकते हैं कि कितने ये 6 लाख लोग थे जो कि खुदावंद की और इबादत के लिए होते थे। और ये इसका नक्शा जो है जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें मालूम है कि वो नक्शा इस तरह से वो हमें मिलता है। अगर आप देखते हैं वहां पे एक होली ऑफ होली थी, यानी मुकद्दस तरीन मकाम था कि जहां पे अहद का संदूक रखा होता था और जहां पे सरदार काहिन जो है वो सिर्फ एक दफा साल में जाता था। उसके साथ जो दूसरा हिस्सा था वो होली प्लेस थी। होली प्लेस में एक तरह से वहां पे ऑल्टर था, वहां पे जो कि खुशबू रखी जाती थी। फिर उसके बाद एक लैंप स्टैंड था जो कि जिसको मिनोरा भी कहा जाता है। 7 उसमें मशालें होती हैं और 7 जो कि लोग इससे वाकिफ हैं वो उनको मालूम है कि मिनोरा पे। और उसके बाद जब आप सहन में चले जाते थे, उस कोर्टयार्ड में चले जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था जिसे लेवर कहा जाता था। उसमें पानी होता था ताकि सरदार काहिन जो जितने भी काहिन थे वो जब कुर्बानियां गुजरानते थे उस ऑल्टर पे तो वो अपने हाथ और पांव धो सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरदार काहिन जो है उसकी पोशाक तक खुदा ने स्पेसिफाई की थी कि किस तरह से वो पोशाक जो है वो उसकी होना चाहिए। और जैसे आप इसको देख रहे हैं ये काहिन जो है ये इबादत में लीड कर रहे हैं अपने लोगों को, इसी तरह से आज जो हम चर्चेस में लीड करते हैं वो गाउन पहनते हैं, वाइट गाउन है या वाइट एंड ब्लैक गाउन पहनते हैं। हम उसको उस रिवायत को कायम रखना चाहते हैं कि किस तरह से वो हम इस इबादत को करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि खुदा जो है वो इबादत में हमेशा शामिल होता है। और वो शमूलियत जो है वो किस तरह से होती है, वो रूहुल कुद्स की वजह से होती है। हम मसीही जो हैं हम एक ट्रायून खुदा पे यानी तसलीसी खुदा पे यकीन रखते हैं। तसलीसी खुदा का मतलब ये नहीं है कि वो 3 खुदा हैं, लेकिन वो एक ही खुदा है जो 3 रूप उसके रूप है, यानी खुदा बाप है, खुदा बेटा है और खुदा रूहुल कुद्स है। और रूहुल कुद्स की मौजूदगी जो है वो यहां पे होती थी उस खैमा इज्तमा में, उस टैबरनेकल में। यहां तक रूहुल की मौजूदगी होती थी कि वो जितने काहिन थे वो जो इबादतें करवा रहे होते थे वो उसकी पावर की वजह से खड़े नहीं रह सकते थे। लेकिन जब बनी इसराइल कौम जो हुई अब पहुंच जाती है वो अपनी वादा की हुई जमीन में, तो वहां पे क्या होता है, तो खुदा फिर सुलेमान बादशाह को ये कहता है कि तू मेरे लिए एक परमानेंट टेंपल बना, एक परमानेंट टेम्पल बना, और वो टेम्पल जो है वो हमें दिखाई देता है, उसका नक्शा आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से वही नक्शा है जो होली है, होली से उसके बाद जब वहां पे कुर्बानियां जब होती थी, और उसके बाद जो बाकी यार्ड है वो जेंटाइल्स के लिए या औरतों के लिए भी रखा गया, और इस तरह से वो तमाम की तमाम मस्जिद जो है वो बड़ी रूह और सच्चाई से वो करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है आज क्या हो रहा है, अब वो टेम्पल तो खत्म हो गया, क्योंकि वो टेम्पल जो है रोमी हुकूमत ने 70 AD में उसको मिसमार कर दिया, और वो टेम्पल जो है वहां पे पहली दफा 584 AD में वो तबाह हुआ, 584 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट वो उसको नबूकदनज़र ने मिसमार किया। फिर उसके बाद नहमिया आता है और वो यरूशलेम की मुरम्मत करता है, फिर से टेम्पल बसता है, और फिर उसके बाद जो है खुदा यीशु मसीह ने ये कह दिया था कि इस पे पत्थर नहीं रहेगा, और यही हुआ कि AD 70 में दूसरी दफा वो टेम्पल जो है वो मिसमार हो गया, वो तबाहो बर्बाद हो गया। आज वहां पे क्योंकि जब दसवीं ग्यारहवीं सदी में मुसलमानों ने वो फतह किया, तो आज वहां पे मस्जिद अक्सा आपको नजर आती है, आज वहां डोम ऑफ द रॉक आपको नजर आता है, और वो जो है टेंपल खत्म हो चुका है। इसीलिए यहूदी जो है वो दीवारे गिरिया के ऊपर जाकर अफसोस करते हैं कि व्हाई डिड दे लूज देयर टेंपल, दैट वाज द सेंटर ऑफ देयर वर्शिप। लेकिन हम आगे चल के देखना चाहते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने ये बातें कही, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं, जब हम उनकी अब एडवेंट में दाखिल हो चुके हैं, नेटिविटी जो है उसका मतलब ये होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होना, बर्थ ऑफ जीसस, ये लैटिन वर्ड से निकला है, और ये 1150 AD में इसको यूज किया गया था। अब यहां पे हमें यही देखना है कि किस तरह से पहले खुदा ने उस वर्शिप सेंटर जो था उसका नक्शा दिया, यहां तक हर डिटेल जो है, हर तफसील जो है वो दी गई। अब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है, जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है, तो खुदावंद यीशु मसीह जब मौजजात करते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील है और उसका चौथा बाब, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका चौथा बाब, और वो हमें एल्डर साहब सुनाएंगे कि उसकी चौथा बाब 21 से लेकर 26 तक हम सिर्फ सुनेंगे, चौथा बाब 21 से लेकर 26 आयत तक।
यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तिस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।
जी, यहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात जो है वो एक खातून से होती है, जबकि वो वहां से यहूदी औरत है, उसके साथ उनकी मुलाकात होती है, और आपको मालूम है कि वो सामरिया के इलाके से गुजर रहे हैं, तो उनको प्यास लगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल इंसान भी हैं, वो मुकम्मल खुदा भी हैं, उनको इंसान होते हुए भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, और वो जब इस मुलाकात, वो कहते हैं इस याकूब का कुआं है जहां पे वो रुकते हैं, और वहां से इस औरत को कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो वो औरत उसको कहती है कि तू यहूदी हो कि हम सामरियों से पानी मांगता है, क्योंकि सामरी लोगों को यहूदी लोग जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और वो खुदावंद यीशु मसीह को बताती है कि हम ये जो सामरी लोग थे ये पहाड़ पे इबादत करते थे, जिस तरह के टेंपल माउंट पे ये सोलोमन बादशाह ने बनाया था, इस तरह से ये सामरी लोग जो थे, ये लंबी बात है कि वो एक और पहाड़ था उस पे वो इबादत करते थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, उन्होंने कहा कि वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में, तुम जिसे तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि तुम खुदा बाप की परस्तिश करो, ये इट डजंट मैटर कि तुम कहां पे परस्तिश करते हो, कहां पे इबादत करते हो। तो इस तरह से वो कहते हैं खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करे। तो वो पूछती है कि कौन है, तो वो उनको बताते हैं, यीशु ने उससे कहा कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वो ही हूं। मेरे भाई और मेरी बहन, जो हम प्रस्तिश करते हैं वो एक जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं, वो हमारा मुनजी दाता है। और इस तरह से हम जो है जब हम एडवेंट सीजन में दाखिल हो रहे हैं, तो हम इसीलिए उसी शख्स की जो हम ईद मनाने के लिए जा रहे हैं, यानी क्रिसमस मनाने के लिए, उसी की प्रस्तिश जो है वो ही इससे करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा है कि उसकी प्रस्तिश हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड देखें तो चर्च ने बड़े खूबसूरती के साथ सारे साल के लिए एक परस्तिश जो है, इबादत जो है वो मुरतब कर दी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मसीही की जिंदगी जो है, एक मसीही जो है उसकी जिंदगी जो है बड़ी ऑर्गेनाइज जिंदगी है। मेरे एक मुसलमान दोस्त थे, उन्होंने कहा यार आपकी क्या बात है, पैदाइश से लेकर फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव आपकी एक जो बड़ी खूबसूरत किस्म की जिंदगी है जो आप गुजारते हैं, और वो जिंदगी जो है हमें मिलती है, हमें मिलती है उस परस्तिश से, उस इबादत से जो कि सच्ची इबादत है। जो सही मसीही है वो इसको जानते हैं। और वो जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मसीही की जिंदगी जो है वो कितनी ऑर्गेनाइज जिंदगी है। जब वो पैदा होता है तो उसका बपतिस्मा किया जाता है, जब वो बड़ा होता है तो सन्य बलूगत को पहुंचता है तो उसको कॉन्फर्मेशन उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हम उस, जब वो बालिग हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें मालूम पड़ता है। इस तरह से जो पहले चार इतवार का जिक्र मैंने किया है, जो मसीह खुदावंत की पैदाइश से पहले हैं, उनको हम एडवेंट सीजन कहते हैं, उसको हम टाइम ऑफ क्रिसमस भी कहते हैं। जब टाइम ऑफ क्रिसमस आता है तो उसके बाद क्रिसमस आ जाता है। क्रिसमस के दौरान हमारी छह किस्म की इबादतें होती हैं, छह इबादतें होती हैं, यानी नेटिविटी ऑफ द आर लॉर्ड, क्रिसमस ईव होती है, क्रिसमस मिडनाइट की सर्विस होती है, क्रिसमस डॉन की सर्विस होती है, क्रिसमस डे की सर्विस होती है, और उसके बाद फर्स्ट संडे ऑफ क्रिसमस आता है और सेकेंड संडे ऑफ क्रिसमस। इस तरह से छह इबादतें वहां पे हमें होती है। इस तरह से हम आगे चलते हैं तो एपिफनी का सीजन आ जाता है। एपिफनी का सीजन जो है उसमें क्या होता है, एपिफनी का मतलब होता है जाहिर होना। कौन जाहिर होता है, खुदा जाहिर होता है। खुदा जो है वो चरनी में जन्म लेता है, वो अर्श को छोड़ के फर्श पे आ चुका है। वो नन्ना सा बच्चा जो है, जो आपको मालूम है कि उसकी पैदाइश भी जो है वो भी आम तरीके से नहीं हुई, बल्कि खुदा की तरफ से डायरेक्ट वो आया है। वो बाप से नहीं है बल्कि खुदा से है, इसीलिए उसको खुदा का बेटा कहा जाता है। और ये एपिफनी जो है उस बच्चे का जाहिर होना है, और उसमें हमें 6-10 इतवार मिलते हैं, 10 संडे हैं जो कि हमें मिलते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है,
वो अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर लेता है और उसके बाद को जो है हमें ट्रांसफिगुरेशन ऑफ आवर लॉर्ड मिलता है, ट्रांसफिगुरेशन ऑफ, जब वो एक पहाड़ पे गए तो खुदावंद यीशु मसीह और उनके साथ तीन और शागिर्द थे, और वो तीनों शागिर्द जो है हमें पता चलता है कि वो हरमून के पहाड़ पे जब जाते हैं और वहां उनकी छवि जो है वो चेंज हो जाती है, वो नूरानी हो जाती है, और वहां पे हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से एलिया और मूसा उनके साथ वहां पे मुलाकात करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, एलिया और मूसा तो बहुत पहले हजारों साल पहले हो चुके थे, लेकिन यही तो मेरे भाई और मेरी बहन आपको समझने की जरूरत है कि खुदा का इंतजाम कितना खूबसूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह की उस वक्त जो है वो रवाना होते हैं यरूशलेम की तरफ। ये सब जगह हमने देखी हुई है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह की छवि जो है वो चेंज हो जाती है, उसके पहाड़ के दामन में हम जाते हैं और वहां पे पतरस जो हैं वो उनको बताते हैं कि यू आर द सन ऑफ द लिविंग गॉड, कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, मसा किया हुआ है, खुदा की तरफ से मसा किया हुआ है। और फिर उसके बाद जो है उनकी रवानगी जो होती है वो यरूशलेम की तरफ होती है, और यरूशलेम की तरफ रवानगी क्यों होती है, खुदा के प्लान के मुताबिक, ताकि वो है वो सलीब की तरफ रवाना हो जाते हैं, और जब वो सलीब की तरफ रवाना हो जाते हैं तो वहां हमें टाइम ऑफ ईस्टर स्टार्ट होता है, प्री लेंट सीजन है जिसमें के तीन इतवार आते हैं, और उसके बाद लेंट सीजन शुरू हो जाता है, यानी रोजों का वक्त शुरू हो जाता है जो 40 दिन के रोजे होते हैं। और हमें वो रोजे जो है हमें मालूम है कि वो कहां से शुरू होते हैं, वो ऐश वेंसडे यानी राख के इतवार, राख के बुध से शुरू होते हैं, वहां से लेके और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब दिए जाने तक हम देखते हैं कि 40 रोजे कंप्लीट होते हैं और उसमें 6 इतवार आते हैं। फिर उसके बाद जो है हम होली वीक में दाखिल हो जाते हैं और वो होली वीक जो है उसमें 7 इतवार आते हैं जिसमें कि हम बहुत इबादतें करते हैं होली वीक में, यानी कि वो होली वीक आखिरी जो हफ्ता होता है सलीब, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब दिए जाने तक वो हमें, और ईस्टर के तक, उसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर जो है खुदावंद यीशु मसीह का मौत पे फतह होना जो है उसको ईस्टर कहा जाता है, और उसके जो ईस्टर के जो है 8 इतवार आते हैं। इस तरह साल में आगे बढ़ते चले जाते हैं, फिर उसके बाद पेंटिकोस्ट का टाइम आता है जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पे चले जाते हैं और रूह कुद्स का नजूल होता है, और 120 की जमात जो है वो बालाखाने में, जिसको द अपर रूम कहा जाए, जहां पे हम हर दफा जाके देखते हैं कि वहां पे वो इकट्ठे थे तो किस तरह से वो जुबानें जो थी गैर जुबानें वो शागिर्दों पे जाहिर होती हैं। और फिर उसके बाद जो है उसके 3 इतवार आते हैं, और उसके बाद जो है टाइम ऑफ द चर्च शुरू होता है जिसको हम ऑर्डिनरी टाइम भी कहते हैं, ये सीजन ऑफ द पेंटेकोस्ट है, और उसमें 4 इतवार आते हैं। फिर हम बाय द टाइम हम नवंबर के आखिरी हफ्ता में आ जाते हैं जहां से फिर अगला जो है चर्च ईयर शुरू होता है, यानी कि फिर से हम एडवेंट में दाखिल हो जाते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये तमाम जो है जो अच्छे मसीही हैं इसको फॉलो करते हैं, इस तरह से वो खुदा के साथ अपना राबता जो है वो कंटिन्यूसली बहाल रखते हैं, सारे साल में, सालों साल में, अपनी हम सारी उम्र में ये इबादत जो है हम रूह और सच्चाई से कर सकते हैं। और यही जो है ये कौन है जिसकी हम इबादत करते हैं, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है जिसका नाम जो है वो यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ये ब्लैस्फेमी है क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता कि खुदा काम कैसे करता है, लेकिन हम यही बात देखना चाहते हैं, और आखिर में हम देखना चाहते हैं कि हम जब इबादत करते हैं तो इब्रानियों का खत जो है हमें क्या बताता है। इब्रानियों का खत अगर हम देखें तो वहां पे हमें 8वां बाब, इब्रानियों का खत और उसका 8वां बाब
वहां पे हमें क्या इब्रानियों का जो है राइटर हमें बताता है, आठवां बाब है और उसकी पहली छह आयात में आपको सुनाना चाहता हूं कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किबरिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा और मक़दस उस हकीकी खैमा का खादिम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और चूंकि हर सरदार का है नजरे और कुर्बानियां गुजराने के वास्ते मुकरर होता है, इसलिए जरूर है कि उसके पास भी गुजराने को कुछ हो, और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज काहिन ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद हैं जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मूसा खेमा बनाने को था तो उसे यह हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया है उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बहुत बेहतर वादों से बुनियाद पर कायम किया गया। अब यहां पे हमें एक खुलासा दिया गया है कि किस तरह से खुदा ने वो हमें एक नक्शा दिखाया, वो एक टैबरनेकल दिखाया, वो एक खैमा इज्तिमा हमें दिखाया गया और किस तरह से वो काहिन जो थे उनकी लीडरशिप में वो इबादत करते थे। आज किस तरह से पादरी साहबान जो है वही मकाम पे खड़े हैं और वो अपनी कांग्रेगेशन की लीड करते हैं। और जब मुकद्दस यूहन्ना को एक नक्शा दिखाया गया तो उसमें उन्होंने क्या कहा, वो मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब है और वहां पे क्या कहते हैं, वो जैसे हमने सुना है कि वो खुदावंद यीशु मसीह वापस चले गए और वो खुदा की दाहिनी तरफ पे बैठे हैं और वो हमारी शिफायत करते हैं खुदा से। और वहां पे क्या हम देखते हैं, मुकाशवा में मुकद्दस यूहन्ना को एक नक्शा दिखाया गया और क्या वो लिखते हैं 21वां बाब उसकी तीसरी आयत में, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये खुदा का खैमा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह है जो कि चार हफ्तों के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि वो बैतलहम में एक चन्नी में पैदा होंगे। इसीलिए वो लिखा हुआ है कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उसके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आह नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रही और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप नया बनना चाहते हैं तो इस सीजन में खुदावंद यीशु मसीह को हजरत ईसा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें ताकि आप जान सकें कि किस तरह से उनका सलीब दिया जाना जो था वो इसलिए था क्योंकि गुनाहों का कोई मदावा नहीं कर सकता था, सिर्फ एक ऐसा शख्स कर सकता था जो कि बेगुनाह हो और वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत है जो बेगुनाह है। उन्होंने मेरे और आपके गुनाह जो है अपने ऊपर उठा लिए और उन्होंने मुकम्मल कीमत मेरी और आपकी कीमत जो है वो अदा कर दी। वो सलीब पे उन्होंने उनकी मौत वाक्य हो गई और उसके बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मौत पे फतह हासिल कर ली। आप भी कर सकते हैं मौत पे फतह। और ये मैं तबाही मौत की बात नहीं कर रहा, रूहानी मौत की बात कर रहा हूं। तबाही मौत तो एक दफा आदमी मर जाता है फिर उसके बाद वो फिर से जिंदा होगा एक दिन, लेकिन जो रूहानी मौत है वो एक दफा मर गए तो मर गए। और फिर आपको मालूम है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर आप जहन्नुम में के वारिस हो जाते हैं, और अगर कर लेते हैं तो आप जन्नत के वारिस हो जाते हैं। आप खुद फैसला करें आप क्या करना चाहते हैं इस सीजन में, क्रिसमस के टाइम पे इस पे सोचें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन
आमीन। सामीन आपने खुदावंद का कलाम सुना, भाई साहब ने बड़ी शुरू से आखिर तक तमाम हिस्ट्री बताई और आपने चंद हफ्तों से स्लाइडें भी देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिंदा कलाम से बरकत पाते होंगे क्योंकि कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। सो हम कलाम की तरफ ध्यान करते हुए वक्त को आगे बढ़ाएं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है और काफी लंबा हो गया आज का मैसेज। और हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमारी जब जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी किस तरह बदल जाती है और हमारी इज्जत हो जाती है खुदावंद यीशु मसीह के सामने। इसके मुतल्लिक हम देखते हैं और सुनेंगे एक खूबसूरत गीत।
मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है, मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है, मेरी तो ताकत ही खुदावंद है, मेरी इज्जत ही खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। उसका लिखा है इज्जत ही खुदावंद है, मेरी तो दौलत ही खुदावंद है, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है, उसने सुना है, उसने सुना है, आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है, हर एक दुआ को उसने सुना है, मुझे उसकी रज़ा मंजूर, उसकी रजा मंजूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है इज्जत ही खुदा बंद है, है मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है। सारी इज्जत खुदाबंद है, 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 है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदाबंद है।
आपने खूबसूरत गीत सुना, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देते हैं, उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो खुदावंद हमारी इज्जत करता है, हमें प्यार करता है, और दुनिया में रहते हुए हमें जीने और चलने और जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। आपने आज इबादत के मुतालिक सुना कि किस तरह हमें इबादत करनी चाहिए, रूह और सच्चाई से इबादत करनी चाहिए। बेशक गिरजाघर बने हैं, इबादत गाहें बने हैं, लेकिन खुदावंद हमारे दिल में रहता है। उसने कहा यह तुम्हारा मकसद है। तो सामीन, और देखें कि टाइम बड़ी जल्दी से गुजर गया, तो हम आज कोशिश तो नहीं कर सकते कि भाई साहब से सवाल पूछ सकें। खुदावंद ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारा टेलीफोन नंबर आप देख रहे हैं सामने, मसीह की आवाज वॉइस ऑफ क्राइस्ट, भाई साहब का टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, मेरा टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। और ये प्रोग्राम मैं बताता चलूं कि हर इतवार सुबह 8 से 9 बजे तक क्राइस्ट आवर किंग लूथरन चर्च में सिसावा के तामन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद का जिंदा कलाम आपकी जिंदगी में काम करेगा, और इस पे गौर कीजिए इन दिनों में, अपने आप को तैयार कीजिए जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी। तमाम जो टेलीफोन नंबर आप देख रहे हैं टोरंटो के, कैलगरी के, एडमिंटन के, और आप अपने अजीजों को बताएं कि ये लोकल टेलीफोन नंबर है, आप इनसे हमारा प्रोग्राम जो है हमारे चर्च का ये आप सुन सकते हैं। नाम लिखा हुआ है एल्डर कमलडीन, पास्टर जेम्स लूक साहेब, और तमाम टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, हमारे टेलीफोन नंबर भी हैं। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हम अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, और खुदावंद ने चाहे तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।
मौजूद सामीन, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम मसीह की आवाज़ को मुकम्मल तौर पर सुना। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आपने बहुत बरकत पाई होगी। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अपना और अपने अजीजों कारिब का ख्याल रखें। अगले इतवार को सुबह 8 से 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। खुदा ने के बान मसीह यसु का फजल आप सब पर हो, आमीन।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL because we care.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो, 416-655-2000।
Gateway Chevrolet in Brampton has announced a limited-time special offer on Chevrolet and GMC. Are you ready to drive into fall? Only 2.99% finance rate for up to 72 months on pickup trucks. Test drive our new 2.7-liter turbo trucks now and get a $500 gas card on your purchase. Eligible Costco members get a $750 bonus on select SUVs. Come to Gateway Chevrolet at 2 Gateway Boulevard today, Queen Street and Airport Road in Brampton. Call 905-791-7111 or gatewaychevrolet.ca.
RIS, Reviving the Islamic Spirit Convention and Penny Appeal Canada presents Atif Aslam live in concert. इस लाइव कॉन्सर्ट में आतिफ असलम हमद नात और सुफियाना कलाम पेश करेंगे। ये प्रोग्राम दिसंबर की 22 तारीख को मेट्रो टोरंटो कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। तमाम डोनेशन पाकिस्तान में सैलाब जदगान से मुतासर लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रोग्राम की टिकट सिर्फ $49 है। आज ही RISConvention.com पर जाएं और अपनी टिकट हासिल करें।
Good news for holiday season shoppers. Liza Cosmetic is back with huge discount on brand name product. Jee haan, zabardast brand name selection of perfumes, cosmetics, skincare brands, health beauty brands, fashion purses, designer sunglasses and chocolates. Professional hair care and nail colors up to 80% discounts. Liza's warehouse sale.